टोक्यो ओलंपिक से भारतीय खिलाड़ी ऐतिहासिक लम्हे समेटकर वापसी कर रहे हैं। पहले ही दिन मीराबाई चानू ने सिल्वर के साथ जो शानदार आगाज किया, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसे बेहतरीन ढंग से अंजाम पर पहुंचाया। हॉकी, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन और बॉक्सिंग जैसे खेलों में भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का। टोक्यो में भारत के इस परफॉर्मेंस ने आने वाले दिनों के लिए कैसी उम्मीद जगाई है? भारत के अब तक के इस सबसे अच्छे प्रदर्शन का क्या मतलब है? इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं संजीव कुमार, जो नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। संजीव जी, नीरज ने तो कमाल कर दिया, किसी भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का पहला ओलंपिक मेडल, वो भी गोल्ड। क्या मायने हैं इस अचीवमेंट के?
देखिए, अभी हाल ही में भारत के सबसे महान एथलीट हम जिनको कहते थे मिल्खा सिंह, अभी कोविड की वजह से उनका देहांत हो गया। वो पूरी जिंदगी 9 साल से अधिक वो जीवित रहे, वो एक ही सपना पालते रहे। उन्होंने कहा कि कोई एक लड़का, कोई एक लड़की, देश का कोई भी एक युवा वहां से ओलंपिक से मेडल लेके आए तो मैं बहुत बहुत खुश हूंगा, मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। आज मिल्खा सिंह नहीं है, और मिल्खा सिंह को हम सेलिब्रेट इसलिए करते थे कि उन्होंने ओलंपिक्स में 4th स्थान हासिल किया था ट्रैक एंड फील्ड में, जिसको एथलेटिक्स कहते हैं। तो वहां से सोचिए, 4th स्थान को हम इतने साल से सेलिब्रेट कर रहे थे। पीटी उषा 84 में 4th स्थान पर आई, वो भी थोड़े से अंतर से, सेकंड के 1/5 हिस्से से मेडल से चूक गई। उनको भी हम आज तक सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने एशियन गेम्स में जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता, कॉमनवेल्थ में जीता, बट ओलंपिक गोल्ड इन सब के लिए सपना रह गया। आज पीटी उषा ने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं धन्य हो गई। तो सोचिए कि एक मेडल की क्या अहमियत है
जी।
उस इवेंट में जिसमें हमारी उम्मीद भी नहीं थी, हमें लग रहा था कि दौड़ में कभी कोई मेडल आ जाएगा। थ्रो में हमेशा से कुछ ऐसे देश हैं जिनको माना जाता रहा है कि वो थ्रो इवेंट्स में बेटर हैं, वो हमसे बहुत अच्छे हैं और जीतेंगे तो वही। लेकिन हुआ ये कि जो वर्ल्ड चैंपियन है वो पता नहीं कैसे प्रेशर में आ गया, और नीरज पहले ही थ्रो से, जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक पहला थ्रो किया, उससे ज्यादा दूसरा थ्रो किया, और कोई उनके साथ होड़ में नहीं रहा। तो जिस अंदाज में उन्होंने मेडल जीता, ये भी नहीं रहा कि किसी तरह तीसरे आ गए या किसी तरह चौथे आ गए। उन्होंने शुरू से नंबर वन, जो उन्होंने शुरुआत की, नंबर वन पर खत्म की
जी।
तो ये एक प्रेरणा है। देखिए, नीरज एक यहाँ हरियाणा के रहने वाले हैं, और एक ही सपना होता है बहुत सारे लड़कों का कि वो क्रिकेट खेले, अगर खेल में आना है। उनको क्रिकेट कभी प्रेरित क्रिकेट ने नहीं किया, वो शौकिया ऐसे ही आ गए थे क्योंकि थोड़े से वो मोटे थे, उनके फैमिली वाले लोगों ने कहा कि जाके मैदान में कुछ खेलो, और वो मजाक मजाक में वो जेवलिन फेंकने लगे, और एक छोटी सी सेना में नौकरी मिल जाए इसके लिए तैयारी करने लगे, और यहां तक पहुंच गए। और हम उनसे मिले हैं और हमने उनको उनसे बातचीत की है, वो जिस तरह से शांत है और जिस तरह से लक्ष्य के प्रति वो बिल्कुल फोकस थे, और आज उन्होंने कर दिखाया। तो एक नई जो पीढ़ी है वो सोचेगी कि ये भी एक जरिया है हम जीवन में, क्रिकेट हमारे देश का नंबर वन खेल है, हम इससे भी नाम कमा सकते हैं, इससे भी हम देश का नाम रोशन कर सकते हैं, और अपना भी नाम रोशन, इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हमारे नाम पर लिखा जाएगा, वैसा कुछ कर सकते हैं। तो नीरज ने वो कर दिखाया है। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोलेंगे, यहाँ पर एथलेटिक एकेडमी खुलेगी, तो ये एक जो कहीं ना कहीं हम हर बार हार कर आते थे और लगता था कि चलो इस कोई दमखम नहीं, 2-4-10 एथलीट तैयारी करते थे, अब मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एथलेटिक्स में भी बहुत कुछ होगा, और बहुत से लड़के, बहुत से युवा सपना देखेंगे कि मैं भी एक दिन नीरज की तरह ओलंपिक्स में मेडल जीतू। नीरज ने जेवलिन थ्रो को, भाला फेंक को आसमान तक ही नहीं, सूरज तक पहुंचा दिया, मेरा मानना है
जी। तो आप कह रहे हैं कि एथलेटिक्स में जो है अब एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी है। टोक्यो में वैसे देखें तो कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने, और ओलंपिक खेलों में भारत की ये अब तक की सबसे अच्छी मेडल टैली है। 2012 में 6 पदक मिले थे जब, तो 56वां स्थान था और इस बार 47वां है भारत का। तो क्या लगता है आपको, अब एक नई राह बन रही है?
बिल्कुल, देखिए एथलेटिक्स में मेडल जीता हमने, उसमें उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी नीरज से जरूर थी, लेकिन ये लग रहा था कि वो किसी तरह मेडल लेके आ जाए, तीसरी पोजीशन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वहां पर बहुत ही अच्छा हुआ। जिन खेलों में हमने मेडल जीता है, इसके अलावा जिनमें नहीं जीता है और जहां चूक गए हैं थोड़े से, उन्होंने भी उम्मीद जगाई है। हमें देखिए ये उम्मीद थी, एक आकलन किया था हम सभी ने कि कम से कम 10 मेडल आने चाहिए, 10 से ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, 10 से 10 नहीं पहुंचे, 10 से ज्यादा नहीं पहुंचे, उसकी 2-3 वजह हैं। कुश्ती में हमें विनेश फोगट से उम्मीदें थी, वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं थी। हमें निशानेबाजी में बहुत से मेडल की उम्मीद थी, 1 से अधिक मेडल की उम्मीद थी, क्योंकि हमारे पास 3-4 ऐसे शूटर थे जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और अभी भी हैं। और उसके अलावा हमें तीरंदाजी में वर्ल्ड नंबर 1 दीपिका से उम्मीदें थी। तो 4-5 मेडल हम कहीं ना कहीं चूक गए आखिर में आके, और 2-3 में हमने उम्मीदें जगाई हमारे एथलीटों ने, हमारे खिलाड़ियों ने। तो कुल मिला के पहले से काफी बेहतर प्रदर्शन है और भविष्य के प्रति बहुत अच्छी उम्मीदें जगाने वाला ये प्रदर्शन है।
इंडियन हॉकी का जो प्रदर्शन रहा है वहां पर, वो क्या रिवाइवल मान लिया जाए उसको, क्या लगता है आप?
देखिए, एक बात कही जा रही है कि हॉकी में एक नई क्रांति आ जाएगी, मैं बहुत आशावादी हूं, लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हॉकी एक ऐसा खेल है जिसको हम घास के मैदान पर नहीं खेल सकते। हॉकी में हम तब पिछड़े जब ग्रास से एस्ट्रोटर्फ पर हम आ गए। जब एस्ट्रोटर्फ हमारे देश में, एक हॉलैंड में छोटा सा देश है, वहां सुनते हैं कि 400 एस्ट्रोटर्फ है, हमारे यहाँ 50 भी नहीं है, 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। तो अब जब तक देश में करीब 250-300 एस्ट्रोटर्फ नहीं बनेंगे, कम से कम राज्य की राजधानियों में, बड़े शहरों में एस्ट्रोटर्फ होंगे, काम करना होगा। तो हॉकी में अभी जो कहते हैं कि लोहा जो गर्म है उस समय उसको वहां पर हथौड़े चला दीजिए, तो फिर वही वाली बात अभी करनी होगी हॉकी इंडिया को और जो जो भी लोग इससे हॉकी से जुड़े हैं उन लोगों को।
जी, कुछ जो आप दूसरे खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, जैसे लवलीना हैं या सौरभ चौधरी हैं, मनु भाकर हैं, या गोल्फर जो अदिति अशोक हमें मिली हैं, एक तरह से कहिए तो वो एक तरह से मिल गई हैं जैसे, तो ये जो सितारे हैं आने वाले दिनों में इनसे कितना फर्क पड़ेगा?
देखिए, मनु भाकर तो पहले से स्टार है, मनु भाकर से ही बहुत उम्मीदें थी, 3 स्पर्धाओं में उन्होंने हिस्सा लिया, उस सब में उम्मीद थी मेडल की। लेकिन अदिति अशोक पहले से हम जानते थे कि एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं, उम्र उनकी कम है, लेकिन पिछले कुछ साल से वो इंटरनेशनल जो लेडीज गोल्फ टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें वो हिस्सा ले रही थी, तो वो जो खेल से बहुत जुड़े हुए हैं या गोल्फ से जुड़े लोग हैं वो उनको जानते थे, लेकिन आज पूरा भारत उनको जान रहा है। आप याद करें तो 2016 रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्मकार आई थी, 4th पोजीशन पे रही थी, उनको भी खेल रत्न दिया गया क्योंकि उन्होंने इंस्पायर किया, और उनके बाद वाकई बहुत सारी लड़कियां आई। ये अलग बात है कि इस बार हमारा उसमें जिम्नास्टिक्स में बहुत कुछ नहीं अच्छा किया, एक ही लड़की ने क्वालिफाई किया था, लेकिन हाँ कुछ काम हुआ। तो मुझे वही लग रहा है कि गोल्फ में भी कुछ किया जा सकता है, ये लड़कियां और सोचेंगी और खेलेंगी और इंस्पायर होंगी। गोल्फ भी आज लाइमलाइट में हम चर्चा कर रहे हैं उस पर, और खास तौर पर लड़कियों के लिए गोल्फ, मुझे लग रहा है कि और लड़कियां इससे जुड़ेंगी और इसमें रुचि दिखाएंगी।
जी संजीव जी, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है भारत का, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, तो संतोषजनक कहा जाए इसको?
संतोषजनक ही माना जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि कम से कम हम 10 मेडल की उम्मीद कर रहे थे, 10 अगर आ जाते तो मैं कहता कि हाँ ये बेहतर है, बहुत अच्छा है। पिछले 6 मेडल का जो एक था कि हमने सबसे ज्यादा ओलंपिक में एक बार में जीता है 6, जो कि लंदन ओलंपिक में, उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि ये डबल डिजिट में मेडल लेके आएंगे, तो वो होता तो हम कहते कि बहुत ही अच्छा, जैसा सोचा वैसा हुआ। और जैसा मैंने कहा कि 2-3 खेलों में जहां उम्मीद थी वहां पर हम नहीं कर पाए, बस सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है और आगे के प्रति उत्साह जगाता है, उम्मीदें जगाता है। ये प्रदर्शन मैं उसी तरह आंकूंगा, और मैंने जैसा कहा कि कुछ कुछ खेलों में जहां पर हमें उम्मीद नहीं थी, खासतौर पर देखिए लड़कियों की हॉकी की बात है, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का एक सपना था, सेमीफाइनल में बहुत लड़कर और फिर ब्रॉन्ज मेडल के मैच में लड़कर आगे बढ़ी और बड़ी टीमों के साथ मुकाबला किया, तो ये एक उम्मीदें जगाता है। और गोल्फ में कहे और कुछ एक और खेलों में जहां लड़कियां या लड़के थोड़े थोड़े अंतर से चूक गए, अब भवानी देवी का नाम हमें यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि भवानी देवी देखिए इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे कि तलवारबाजी भी कुछ ऐसे खेल होता है और दूसरे देश हिस्सा लेते थे, कभी कोई हमारे देश से गया नहीं, उन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक लेवल एक होता है स्टैंडर्ड, और वहां क्वालिफाई ही नहीं किया बल्कि वो आगे भी बढ़ी, आगे एक दो राउंड के बाद वो हारी, तो उन्होंने भी उम्मीदें जगाई, उनका भी सपना है कि मैं आगे ओलंपिक में भी जाऊं और लड़कियों को जोड़ू, तो ये कुल मिला के जो प्रदर्शन कहा जाएगा वो पहले से बेहतर है, मेडल के हिसाब से जरूर संतोषजनक है।
जी तो संजीव जी, नीरज चोपड़ा ने जो प्रदर्शन किया है वो तो अब इतिहास में दर्ज हो गया है सुनहरे अक्षरों में, और आप कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन जो ओवरऑल भारतीय दल का था वो एक नई उम्मीद जगाता है आने वाले दिनों के लिए। संजीव जी, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद।